लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे यथार्थ मानव बंधुत्व के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने धर्म के कारण भेदभाव से पीड़ित हैं, ताकि उनके मानवाधिकारों और उनकी गरिमा को पहचाना जा सके तथा वे प्रतिष्ठापूर्ण जीवन यापन के भागीदार बन सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन गाउडेटे एट एक्सुल्टाते की चर्चा कर रहे हैं। संत पापा फ्रांसिस का यह तीसरा प्रेरितिक प्रबोधन हम सबों के लिए वर्तमान विश्व में पवित्रता हेतु एक निमंत्रण देता है। अपने इस प्रेरितिक प्रबोधन में संत पापा फ्रांसिस हमारा ध्यान इस ओर केंद्रित कराना चाहते हैं कि हम वर्तमान परिवेश में जहां कहीं भी हैं, अपने में पवित्रता को प्राप्त कर सकते हैं। हमने अपने पिछले प्रसारण में इस प्रेरितिक प्रबोधन के तृतीय अध्याय स्वामी के प्रकाश अर्थात उनके पद चिन्हों की चर्चा करते हुए धर्म ग्रंथ में यीशु ख्रिस्त के धन्य वचनों की चर्चा की, जो हमें पवित्रता के मार्ग में आगे बढ़ने को मदद करते हैं। आज हम चौथा अध्याय वर्तमान विश्व में पवित्रता के चिन्ह की शुरुआत करेंगे। श्रोताओं, संत मत्ती के अनुसार पवित्रता हेतु प्रस्तुत किया गया स्वरूप, जिन्हें हम धन्य वचनों और उनके अध्याय 25 के पद 31 से 46 में पाते हैं, संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि मैं यहाँ कुछ निशानियों या आध्यात्मिकता के मनोभावों का जिक्र करना चाहूँगा, जो मेरी दृष्टिकोण में इसलिए जरूरी हैं, यदि हम अपने जीवन के चुनाव को समझने की चाह रखते हैं जिसके लिए ईश्वर हमें निमंत्रण देते हैं। मैं यहाँ पवित्रता के मार्गों का जिक्र नहीं करूँगा जिसके बारे में हम पहले से वाकिफ हैं, जो प्रार्थना के विभिन्न रूपों, मेल मिलाप और यूखरिस्तीय संस्कार के अमूल्य, व्यक्तिगत रूप में बलिदानों के अनुष्ठान, भक्ति के विभिन्न रूपों, आध्यात्मिक दिशा निर्देशन और दूसरी चीजों को अपने में समाहित करता है। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि यहाँ मैं पवित्रता के बुलावे हेतु विशेष रूप से कुछ एक उन बातों का जिक्र करूँगा जो मैं समझता हूँ हमारे लिए विशेष अर्थ रखते हैं। संत पापा कहते हैं कि वे निशानियाँ जिनके बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगा अपने में पवित्रता के आदर्श रूपों की पूर्ण सूची नहीं है, लेकिन वे प्रेम की पांच वृहद अभिव्यक्तियां हैं जिनके अनुरूप हम प्रेम को ईश्वर और पड़ोसी के लिए वर्तमान समय की सांस्कृतिक खतरों की विकट परिस्थितियों में प्रकट करते हैं। इस परिदृश्य में हम एक तरह की चिंता को पाते हैं, कभी कभार हिंसा जो हमें दुर्बल और विचलित कर देती है, नकारात्मक और सुस्तीपन, उपभोक्तावाद के फलस्वरूप उत्पन्न हुई आत्म संतोष के भाव, व्यक्तिवाद और आध्यात्मिकता को प्रतिस्थापित करने वाली दूसरी बातें जिनका सरोकार ईश्वर से एकदम नहीं होता है, जो वर्तमान समय में धार्मिक चीजों पर हावी होते हैं। दृढ़ता, धैर्य और नम्रता, ये तीन चीजें हमारे लिए उन बातों के क्रम में वे निशानियां हैं जो हमें ईश्वर में सुदृढ़ बने रहने में मदद करती हैं, जो हमें प्रेम करते और जीवन में आगे बढ़ने हेतु मदद करते हैं। हमारे जीवन की यह आंतरिक ताकत हमें अपने जीवन के उतराव चढ़ाव में सदैव स्थिर बने रहने को मदद करती है, बल्कि यह हमें अपने बुरे दिनों, दूसरों के द्वारा विश्वासघात और असफलता का शिकार हुए परिस्थितियों का सामना करने में हमें सहायता प्रदान करती है। यदि ईश्वर हमारे साथ हैं, तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। यह शांति का वह उद्गम स्थल है जिसे हम संतों के जीवन में पाते हैं। ऐसी आंतरिक शक्ति हमारे लिए इसे संभव बनाती है, जहां हम अपने में तेजी से बढ़ने वाली शोरगुल और आक्रामक दुनिया में अपनी पवित्रता का साक्ष्य धैर्य में बने रहते हुए निरंतर अच्छे कार्यों के द्वारा देते हैं। यह हमारे लिए निष्ठा की निशानी है जो प्रेम से उत्पन्न होती है, खासकर उनके लिए जो ईश्वर पर अपना विश्वास रखते हैं, जो दूसरों के लिए भी विश्वसनीय बने रहते हैं। वे दूसरों को उनके बुरे दिनों में नहीं छोड़ते हैं, वे उनकी चिंता और दुख की घड़ी में उनका साथ देते, भले ही ऐसा करने में उन्हें तत्काल संतुष्टि की अनुभूति नहीं मिलती हो। श्रोताओं, संत पौलुस ने रोमवासियों को इस बात हेतु सुझाव दिया कि वे बुराई का बदला बुराई से ना दें, वे प्रतिकार की चाह ना रखें और बुराई से हार ना माने, बल्कि बुराई का सामना अच्छे कार्यों के द्वारा करें। यह मनोभाव हमारी कमजोरी की निशानी नहीं, अपितु सच्ची शक्ति को व्यक्त करती है, क्योंकि प्रभु ईश्वर न केवल देर से क्रोध करते अपितु शांतिपुंज हैं। ईश्वर के वचन हमें इस बात के लिए संबोधित करते हैं, आप लोग सब प्रकार की कटुता, उत्तेजना, क्रोध, लड़ाई, झगड़ा, पर निंदा और हर तरह की बुराई अपने बीच से दूर करें। श्रोताओं, हमें अपने में सभी तरह के क्रोध और स्वार्थपूर्ण मनोभावों को पहचानने की आवश्यकता है और उन्हें अपने में घर नहीं करने देना है। यदि आप क्रुद्ध हो जाएं, तो इस कारण पाप ना करें। जब हम अपने में व्याकुल अनुभव करते हों, तो हमें वैसे घड़ी प्रार्थना करने की जरूरत है जो हमें ईश्वर के हाथों में रखता और यह हमारे लिए शांति का कारण बनती है। किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें और ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है हमारे हृदयों और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेगी। श्रोताओं, ख्रिस्ती भी इंटरनेट और बहुत सारे संचार माध्यमों के द्वारा वार्ता के हिंसक जाल में फंसे रह सकते हैं। यहाँ तक कि ख्रिस्ती संचार माध्यमों में भी हदें पार की जा सकती हैं। मानहानि और बुराई अपने में सामान्य बातें हो सकती हैं और दूसरों के सभी नैतिक मानकों और सम्मान को भुला दिया जा सकता है। इसका परिणाम एक खतरनाक द्विविभाजन होता है, क्योंकि वहाँ ऐसी बातें कही जा सकती हैं जो सार्वजनिक रूप में अस्वीकार्य होंगी और जहाँ लोग दूसरों पर प्रहार करते हुए अपने असंतोष की भरपाई करना चाहते हैं। यह अपने में आश्चर्यजनक है कि कभी कभी नियमों के अनुपालन का दावा करते हुए आठवें नियम को हम पूर्ण रूपेण भूल जाते हैं, जो झूठी गवाही देने या झूठ बोलने से मना करता है। इस भांति हम और बेरहमी से दूसरों की निंदा करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कैसे अनियंत्रित जिह्वा सारी चीजों में आग लगाती है। श्रोताओं, आंतरिक शक्ति कृपा के कार्य स्वरूप हमें हिंसा में बहने से बचाए रखती है, जिसे हम अपने दैनिक जीवन में पाते हैं, क्योंकि कृपा घमंड को दूर करती है और हृदय की नम्रता को संभव बनाती है। संतगण अपनी शक्ति को दूसरों के असफलताओं के बारे में शिकायत करने में खर्च नहीं करते हैं। वे अपने भाई बहनों की गलतियों के संदर्भ में अपनी जिह्वा को संतुलन में बनाए रख सकते हैं। इस भांति वे शीत हिंसा जो दूसरों को बदनाम और उनकी बुराई करती अपने को बचाए रखते हैं। संतगण दूसरों के संग कठोरता से व्यवहार नहीं करते, वे दूसरों को अपने से बेहतर समझते हैं। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन गौदेते इत एसुलताते की चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम से आया है। रहे सारा संसार, जग में रही पहचान है। प्रेम करो प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम से आया है। प्रेम करो प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम से आया है। प्रेम रखे जो इस दुनिया में ईश्वर की संतान है। प्रेम करो प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम से आया है।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। ख्रिस्त एकता हेतु प्रार्थना सप्ताह के अंतिम दिन 25 जनवरी को संत पापा फ्रांसिस ने ख्रिस्तियों से आह्वान किया है कि वे प्रार्थना द्वारा एक दूसरे के करीब रहें। उन्होंने ट्वीट संदेश में लिखा है, आइए हम एक साथ दृढ़ता से एवं ठोस रास्ते पर ईश्वर की खोज करें। हम अपनी दृष्टि ख्रिस्त पर लगाए रखें तथा प्रार्थना में एक दूसरे के करीब रहें। आज संत पापा फ्रांसिस रोम के संत पॉल महागिरजा घर में शाम 5:30 बजे संध्या वंदना के साथ ख्रिस्ते एकता प्रार्थना सप्ताह का समापन करेंगे। लोक धर्मी परिवार एवं जीवन के लिए गठित परम धम पीठे परिषद और रोम धम प्रांत ने कई चिंतन प्रस्तुत किए हैं, जिनका उद्देश्य है 22 से 26 जून तक रोम में आयोजित होने वाली परिवारों की आगामी विश्व सभा की तैयारी करना। परिवारों की 10वीं विश्व सभा 22 से 26 जून 2022 को रोम में आयोजित की जाएगी। लोक धर्मी परिवार एवं जीवन के लिए गठित परम धम पीठे परिषद और रोम धम प्रांत सभा का आयोजन कर रहे हैं, जिन्होंने प्रेरितिक सामग्रियां उपलब्ध की हैं। उनका मकसद है धम प्रांतों, संगठनों एवं संघों को स्थानीय समुदाय में चिंतन हेतु कार्यक्रमों का आयोजन करने में मदद देना। जून की सभा वास्तव में अभूतपूर्व एवं बहुकेंद्रित प्रारूप में होगी, जिसमें दुनिया भर के धम प्रांतों में स्थानीय पहल की जाएगी। इस आयोजन के आलोक में रोम धम प्रांत ने परिवार पर 8 धम शिक्षाएं तैयार की हैं, ताकि विश्वभर की पल्लियों में आयोजित होने वाली सभाओं को मदद दिया जा सके। सभी तैयार धम शिक्षाएं सभा की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। रोम धम प्रांत के परिवारों की प्रेरितिक देखभाल के निदेशक माननीय दारियो क्रिस्कोली ने बतलाया कि वीडियो में व्यक्तियों की व्यक्तिगत कहानियां बतलाई गई हैं। वे छोटे फिल्म के रूप में हैं और करीब 8 मिनट के हैं, जिनमें रोम के दंपतियों या व्यक्तियों ने अपनी कहानी साझा की है। निदेशक ने कहा, ये उन लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने अपने आप को मलबों के साथ पाया। कहानियां आसान नहीं हैं, वे हमेशा त्रुटि रहित नहीं होते, किंतु वे आंतरिक एवं सच्ची सुंदरता के धनी हैं। ये उन लोगों की कहानियां हैं जो पारिवारिक संबंध में मानव जीवन की सबसे समृद्ध एवं गहरे खजाने की खोज करते हैं, और उन लोगों की कहानियां भी हैं जिन्होंने इन संबंधों में अपने अस्तित्व की यात्रा के अंतिम लक्ष्य को न केवल पा लिया है, बल्कि उनके लिए एक शुरुआती बिंदु है कि वे ऐसे लोगों की मदद करें जो इस खजाने को अब तक नहीं पाए हैं। वास्तव में वीडियो में पति पत्नियों, बच्चों और दादा दादी के बारे चर्चा की गई है, साथ ही साथ बुलाहट में पौत्रता पर भी विचार प्रस्तुत किया गया है। संत पापा ने कहा है कि परिवार पहला स्थान है जहां हम पूर्ण होना या किसी के लिए होना सीखते हैं। यह प्रेम, आशा, देखभाल और पुनरुत्थान का स्कूल है। यह उस महान और सरल रहस्य की रक्षा करने वाला स्थान है जिसमें हर एक की खुशी का राज है कि हर एक व्यक्ति दूसरों के जीवन में अपने लिए स्थान बनाता है। एड टू द चर्च इन नीड ने 1 फरवरी को म्यांमार में तख्तापलट की पहली वर्षगांठ पर म्यांमार के लिए प्रार्थना का आह्वान किया है। 1 फरवरी को म्यांमार में तख्तापलट की पहली बरसी है। सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों के लिए सैन्य प्रतिक्रिया अत्यंत निर्दयी और क्रूर रही है। यही कारण है कि एड टू द चर्च इन नीड ने म्यांमार के कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन की 14 जनवरी की अपील का स्वागत किया है तथा स्थानीय कलीसिया के प्रति एकात्मकता व्यक्त करते हुए 1 फरवरी को एशियाई देशों से एक दिन की प्रार्थना का आह्वान किया है। संघर्ष से सबसे अधिक प्रभावित राज्य हैं चीन, काया और कारेन। मध्य दिसंबर से जब बरसात के मौसम के अंत में यात्रा की सुविधा हुई तो दमन फिर से तेज हो गया, खासकर दक्षिण पूर्व में। इन राज्यों में क्रिस्तों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है और एड टू द चर्च इन नीड ने जानकारी प्राप्त की है कि काया के 14 पल्ली वासियों को अपना स्थान छोड़ना पड़ा है। उनके साथ पुरोहित और धर्म सामाजी भी जाने के लिए मजबूर हैं, जो जंगलों एवं सुदूर गांवों में शरण लिए हुए हैं। पिछले दिनों काया की राजधानी लोईकाओ फौजियों के आक्रमण के निशाने पर था। आसपास के क्षेत्रों के हजारों शरणार्थियों के बीच 300 लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हैं, जिन्होंने महागिरजाघर के परिसर में शरण ले रखी है। उनमें से कई बूढ़े, महिलाएं, विकलांग और बच्चे हैं, अथवा भागने के लिए उनके पास कुछ भी साधन नहीं है। म्यांमार के धर्माध्यक्षों ने व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से बार बार हिंसा के अंत की अपील की है एवं वार्ता का आह्वान किया है। उनकी आवाज के साथ संत पापा फ्रांसिस ने भी अपनी आवाज दी है। उधर कनाडा में यूक्रेन के ग्रीक कैथोलिक धर्माध्यक्षों ने यूक्रेन के लोगों के प्रति सामीप्य व्यक्त की है, जब रूस में तनाव बढ़ रहा है उनके प्रति एकात्मकता का आह्वान किया है। जब यूक्रेन को रूस के हमले की धमकी मिल रही है, कनाडा में रहने वाले यूक्रेन के ग्रीक कैथोलिक धर्माध्यक्षों ने पोप फ्रांसिस एवं यूरोप के धर्माध्यक्षों के साथ मिलकर संकट के शांतिपूर्ण समाधान की अपील की है। साथ ही यूक्रेन के कैथोलिकों के प्रति अपना आध्यात्मिक सामीप्य व्यक्त किया है। यूक्रेन के ऊपर तनाव अमेरिकी सचिव अंतोनी ब्लिंकन के रूसी विदेश मंत्री सेर्जे लावरोव से 21 जनवरी को जेनेवा में मुलाकात के बाद भी भारी है। यद्यपि लावरोव ने जोर दिया है कि रूस हमला करने नहीं जा रहा है, और ब्लिंकन ने कहा है कि मुलाकात ने एक दूसरे की चिंता को समझने के लिए स्पष्ट रास्ता प्रदान किए हैं, फिर भी वार्ता में कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। दो पूर्व सोवियत संघ के देशों में तनाव 2014 में मॉस्को द्वारा क्रीमिया पर कब्जा करने और अलगाववादी डोनवास क्षेत्र में सशस्त्र संघर्ष में रूसी भागीदारी के बाद शुरू हुआ था। यह तनाव हाल में अधिक बढ़ गया है, जब रूस ने यूक्रेन से लगी अपनी सीमा पर करीब 1,00,000 सैनिक जमा किए हैं। अमेरिका और यूरोप दोनों ने रूस को चेतावनी दी है कि किसी प्रकार के आक्रमण का कड़ा जवाब दिया जाएगा। कनाडा में यूक्रेन के कैथोलिकों की करीब 1.3 मिलियन संख्या है। 23 जनवरी को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि कनाडा के ग्रीक कैथोलिक धर्माध्यक्ष यूक्रेन के लोगों को आश्वासन देते हैं कि वे उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तथा उनका समर्थन करते हैं। धर्माध्यक्षों ने कनाडा के सभी भली इच्छा रखने वालों का आह्वान किया है कि वे इस तनाव को विश्व के दूसरे हिस्से में हो रही एक दूर की घटना के रूप में न देखें। तनाव की स्थिति को देखते हुए संत पापा फ्रांसिस ने 26 जनवरी को शांति हेतु प्रार्थना करने का आह्वान किया है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।